الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج ہم حضرت کا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے جد امجد ہیں، ان کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی ہے، مقامات قدبیہ و مقالات قدسیہ، یہ ان کے صاحبزادے مولانا حلیم گل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حلیم گل بابا کہتے ہیں، انہوں نے لکھی ہے فارسی زبان میں، اور پھر اس کا ترجمہ ہوا ہے. اگرچہ ترجمہ اتنا زیادہ شاندار نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ تو ہے، تو یقیناً نہ ہونے سے بہتر ہے. تو اس کو انشاءاللہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اچھا ترجمہ ہو. اصل میں یہ تو بات ہے کہ کبھی بھی جو جس زبان میں کوئی چیز لکھی جاتی ہے، ترجمے میں اتنی پوری بات نہیں آ سکتی، وہ مکمل انتقال وہ نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو. تو یہ کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو حضرت کا جو فیض ہے اس میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش ہم کریں. باقی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، یہ سعادت بظور بازو نستان بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت کسی طاقت یا کسی کوالٹی کے بنیاد پر نہیں ہوتا. ہاں، اللہ پاک جس کو نصیب فرما دے تو اس کو نصیب فرما دے. ہاں، یہ بات ہے. یہ بات ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ کوئی خیر بہت قریب ہوتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے انسان اس سے رہ جاتا ہے. پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں، کاش میں اس کو حاصل کر لیتا، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو جیسے ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت ماشاءاللہ یعنی صفات اونچے عطا فرمائے تھے. پشاور میں چونکہ تھے، لہٰذا پشاور والوں کو اس کا ادراک نہیں تھا، احساس نہیں تھا، لہٰذا پشاور والے ان سے زیادہ مستفید نہیں ہوئے. ہاں جی، دور دور کے لوگ مستفید ہوئے، قریب والے مستفید نہیں ہوئے. حیرت کی بات ہے، مطلب یہ، اور یہ اس طرح ہوتا ہے اکثر، رشتہ دار حضرات اور پڑوسی مستفید نہیں ہوا کرتے. یہ دنیا میں ایسا عجیب رسم چلی ہے کہ نہیں مستفید ہوتے. وہ جن کی قسمت میں ہوتی ہو، چاہے وہ ہزار میل دور ہو، اس کو اللہ پاک نصیب پہنچا دیتے. جن کے نصیب میں نہیں ہوتا تو سامنے چیز ہوتی ہے. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے کراچی میں، تنویر مصحف کا خلیفہ تھے. تو ہمارے جان پہچان والے ساتھی تھے، ان کے پاس ہمارا ملنا جلنا ہوتا تھا. تو میں نے جب ان کے واقعات سنائے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہتے ہم تو ان کے محلے میں رہتے تھے، کاش یہ باتیں ہمیں پہلے معلوم ہوتی ہے، ہم تو صرف ایک مہنگا ڈاکٹر اس کو سمجھتے تھے. اب ظاہر کوئی صحیح دوائی دیتا ہوگا تو مہنگا تو ہوگا. ظاہر آج تو وہ پھر یہی ہے کہ وہ کہتے ہم تو صرف ایک مہنگا ڈاکٹر. اچھا، ان کے ایک بھانجے کو جہاز میں ہماری ملاقات ہوئی، بحری جہاز، ان کو جب پتہ چلا تو وہ حیران ہو گیا کہ کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا. دیکھو یہ عجیب باتیں، ہمیں پتہ نہیں چلا. آج تو یہ بات ہوتی ہے، مطلب پڑوسی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پڑوسی بھی تھا مال لے کر، ان نے بھی یہ بات کی. اور جو رشتہ دار ہے، یعنی بھانجا، بھانجا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، تو مجھ کو بھی نہیں احساس ہوا اس وقت. اس طرح مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو رشتہ دار تھے، ان نے نہیں حاصل کیا. ہاں جی، جو پڑوسی تھے امیجیٹ، انہوں نے بھی حاصل نہیں کیا. تو یہ بات ہے. اب یہ جو کاکا صاحب رحمۃ اللہ کا جو فیض ہے، یہ بھی اصل میں اس قسم کی بات ہے कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है लेकिन लेने वाले नहीं, लेने वाले नहीं। तो इंसान क्या करे, वो ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं दिया जा सकता। खुद हज़रत कासिम रहमतुल्लाह अलैह को उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने अपने बच्चों के बारे में कहा कि इतने सारे मखलूक पे आप तवज्जो फरमाते हैं तो ज़रा अपने बच्चों पर भी तवज्जो करें। हाँ जी, तो उनने फरमाया कि बस हर चीज़ का अपना वक़्त होता है। तो जब उनने बहुत कहा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब मैं इशराक की नमाज पढ़ के बाहर आऊँ तो मेरे सामने उसको बिठा देना, वो बिठा देना। तो बच्चे थे, बच्चे तो खेलकूद वाले होते हैं, बिठा दी। हज़रत जब इशराक के बाद बाहर चले, बाहर आ गए, उससे कपड़े इस तरह आपको बिठा लगा था, तो जहाँ बच्चे बिठाए थे वहाँ बिखर गए थे, वो इधर उधर हो गए थे। वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ था। आज तो उनने जब नज़र उठाई तो कुत्ते पे नज़र पड़ी। हाँ जी, तो इस पर जो है ना वो ये हुआ कि उन्हें अपने जोजो मोहतरमा से कहा, मैंने कहा नहीं था कि किस्मत में जिसके जिस वक्त होता है तो उस वक्त मिलता है। उस कुत्ते का ये हाल हुआ कि बिल्कुल उसने जो है ना, मतलब है कि काका से मौत के खानकाह के बिल्कुल सामने एक जगह ज़मीन गोद के उसके लिए अपनी कुटिया से बना ली और बदरी होता था, कहीं नहीं जाता था। और शेर भर के कुत्ते आके उसके गिर्द इस तरह दायरे में बैठे होते थे, इस तरह सर झुका के जैसे कोई मराकब हो। आज इस तरह मतलब है कि जो ना वो मतलब उनका ही हाल था। अब देखो नज़र में बात तो थी लेकिन अब लेने वाले कोई हो, कोई लेने वाला हो। तो इस किस्म की बात होती है बाज़ दफ़ा, अल्लाह पाक ने रखी होती है, लेकिन किस्मत किस्मत की बात होती है, मुकद्दर मुकद्दर की बात होती है। हाँ जी, ये मामला बड़ा अजीब है। तो ये मैंने इसके तर्जुमे का एक बहुत अच्छे काका खेल से कहा था, जो इंशा परदाज है, काफ़ी अच्छा लिखने वाला है, उसने वादा भी किया कि मैं कर लूँगा। तो बाद में जब मेरे उनसे राबित हो, कभी कुछ काम हुआ कि तो किसी दूसरे काम में लग गया था, कहते वो तो बस इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, बस आपके मुकद्दर में नहीं, अब मैं क्या करूँ, ज़बरदस्ती तो आपको नहीं दिया जा सकता। हाँ जी, नहीं है बस ख़त्म। हाँ जी, तो मतलब ये कि ये वाकई किसी के मुकद्दर में होता है तो होता है, वरना फिर रह जाता है। तो अल्लाह पाक के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक शख्स है जो कि इतना ज़्यादा ज़हीन फ़तीन नहीं है, लेकिन कबूलियत हो जाए तो उसको ज़हीन बनाना उसके लिए क्या मुश्किल है, किसी वक्त भी उसको ज़हीन बना सकता है। हमारे शेख मौलाना शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो किताब है शाराए मारिफत, सैयद सलूकी सुलेमानी जिसको कहते हैं, उसकी पेशानी पे एक शेर लिखा हुआ है। हाँ जी, दादे उरा शर्त काबिलियत निस्त, दादे उरा शर्त काबिलियत, बल्कि शर्त काबिलियत दादे उस, उसके देने के लिए काबिलियत शर्त नहीं है, बल्कि काबिलियत की शर्त यह है कि वो दे दे, बल्कि शर्त काबिलियत दादे उस, यानी काबिल होने का शर्त यह है कि क्या है, वो दे दे तो फिर काबिल हो जाए। तो इस वजह से मतलब ये नहीं है कि कोई ये जो काम होते हैं ये मोहताजी है, वो तो अल्लाह पाक जब किसी को दे देते हैं तो फिर शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जितना भी हो जाए, और इंशाल्लाह फिर जारी रखेंगे। बाब अव्वल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल्मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खुदा की हम्द के बाद अब्दुल हलीम यानी गुल बाबा, जो कि खुदा ताला के लिए वसीला की तलाश में है, वब्तगू इलैहिल वसीला, कुरान पाक कह रहा था ये अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले तलाश करो। अर्ज़ करता है कि मैं गुनाहगार और तरदामन हूँ, मगर इसके बावजूद खुदा रहीम और करीम की रहमत से उम्मीद रखता हूँ कि मेरे गुनाहों को अफ़ फरमाएगा और मेरी इबादत और ताअत को मेरे शर्मिंदगी और अज़ाब का सबब नहीं बनाएगा, बल्कि मुझे बहिश्त बरीन में दाखिल फरमाएगा और हश्र नश्र के दिन मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा और मेरे साथ सख्त हिसाब नहीं फरमाएगा और दोज़ख़ के अज़ाब से मुझे पनाह देगा और मुझे आरफ़ और मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत नसीब फरमाएगा। वरज़ुक़नी शफ़ात नबी करीम या मौलाना या मौलाना या सामे दुआना योम हश्र व नश्र वफ़िर वीना वखिल जन्नता वजन मिन नार बहरमती ही वला तकदीर जान। हमारे मौला हमारे मौला हमारे दुआओं के सुनने वाले हश्र नश्र के दिन नबी करीम सज़म की शफ़ात मुझे नसीब फरमा, मेरे और मेरे वालदिन की मगफ़रत फरमा, मुझे जन्नत में दाखिल फरमा, रसूल करीम सज़म की हुरमत के तफेल मुझे दोज़ख़ से दूर फरमा और हमारी उम्मीदें उनका कतअ न फरमा। चूँकि मेरे दिल दिमाग में हज़रत काकासिब रहमतुल्लाह अलैह की मदह और तारीफ़ कसरत से आती थी और मेरे सख्त ख्वाहिश थी कि अपने शेख मोहतरम के मनाकब जमा कर दूँ, इसलिए चंद एक सही मनाकब जो कि मेरे हाथ मुझे हाथ लगे थे मैंने हवाले कर तासु कलम किए, उनको जब्त तहरीर में लाया। अगरचि मैं ख़ुद को उनकी मदह तहरीर के काबिल नहीं समझता लेकिन मैंने अपने फ़ायदे के लिए बहुत मेहनत करके मनाकब जमा किए हैं और आखिरत में मेरे लिए बायस नफ़ा जज़ा हो। पहला बाब, हज़रत साहब के अस्मा के बयान में और हज़रत साहब का तरीक़ा और जनाब हज़रत साहब का मुरीदों की तरबियत का बाबरकत तरीक़ा। जनाब हज़रत साहब के दो नाम हैं जो कि लोगों में बहुत मशहूर थे, ये है शेख रामकार, शेख रामकार कस्तरी कस्तर बसकून रा, और बहुत से लोगों को उसको काका कहते थे और मुग़ली ख़ानदान के बाद लोग उसको रहमान कार कहते, मतलब ये कि काका साहब के कई इजाफी नाम, मतलब जिसको हम कहते ना मतलब तारुफी नाम, ये मुख्तलिफ यानी होते। रहमकार का मतलब तो यही है जो रहम करने वाला है, शफीक मतलब रहम करने वाला, तो ये मतलब। तो असल नाम के बारे में मतलब बाद लोग कहते हैं कि कस्तर गुलता। औसाफ़ हमीदा की पहली किस्म, शेख रामकार रहमत के औसाफ़ हमीदा ये है कि वो बहुत दीनदार थे, साहिब क़ुर्ब थे और बसात क़ुर्ब पर मतमकिन थे, उसमें किब्र व गुरूर का शायबा तक नहीं था। ये हज़रत का खुसूसी शान था कि तवाज़ो बहुत ज़्यादा, जैसे मट्टी होती कोई चीज़ बिल्कुल, अपने आप कुछ नहीं समझते थे, कल्ब सलीम के मालिक थे और उस कल्ब सलीम में किसी किस्म की गैरुल्लाह की कदरत नहीं रखते थे, गैर हक से निगाह आशना न थे, मारिफत की मोहब्बत अपने सीने में कमाल दर्जा रखते थे, गैर हक पर नज़र नहीं रखते थे, ज़ाहिर में किताब ख्वाँ और बातिन में तकवा से आरास्ता, उकबा को मद्दनज़र रखते, रायश के सरगर्म राहरो और शेज़वार इश्क मोहब्बत थे, वो साहिब जज्ब कशिश थे, मरातब आली के मालिक अपने हस्ती की नफ़ी करते और रात के वक़्त गैर हक को छोड़कर सैर माल्ला में मशगूल होते, दरमियान से गैरियत बरतरफ थी, मुहक्किक और सरापा मोहब्बत थे, शरीयत में कमाल दर्जा का हासिल था, तरीकत व हकीकत में नाम थे, सरापा शौक थे और शौक व इश्तियाक में हर वक़्त रुबत रखी थे, आपका दिल तवक्कुल से ममलू था, दिल में मजलूबों की तरह सोज़ और जज्बा रखते थे, तकर्रुब के मैदान में गोई सबकत ले चुके थे, अपने ज़माने में बाअदब मुक्तदा और पेशवा थे, खुद भी कामिल थे और दूसरों को भी कामिल बनाने का सलीका रखते थे, मोहब्बत इलाही के शराब से सरशार थे, इल्म लदुनी के आलम और राह हक के शनासा थे, खुदा की मखलूक उनकी मुलाकात से दाने असपन की तरह सोजश में आते, कशफल कुलूब के हामिल थे, अपने नफ्स के आरफ थे और मौत से कबल अशनाए मौत हो गए थे, फ़कत अपने मतलूब पर नज़र जमाए रखते थे, उनमें अनानियत बिल्कुल नहीं थी, उनकी बका हक पर थी यानी बाकी बिल्ला थे, हकीकी ईमान रखते थे और बगैर किसी पर्दे हिजाब के हकुल यकीन रखते थे, वलेकिन यकीन रखने की वजह से सवाल जवाब के मोहताज न थे और किसी किस्म की लाफजानी नहीं करते, वो साहिब अक्ल व खैरत थे और मुकाम खैरात में मुकीम थे, मुकाम हैरत में मुकीम थे। ये असल में मुकाम खीरत लिखा हुआ है तो खीरत तो कोई बात नहीं बनती, या तो खैरात हो या फिर हैरत, मेरे ख्याल में ये खैरत ही होना चाहिए क्यों, मुकाम हैरत बाकायदा अपना एक मुकाम है, मुकाम हैरत में मुकीम थे, कमाल हक अदायगी के साथ बकसरत अमाल करते थे, अखलाक व करदार नेक अकवाल व गुफ्तार इलम से पुर रखते थे और शरीयत का बहर बेकरां थे और शरीयत के मुताबिक अखलाक रखते थे, कौल के सच्चे और झूठ और फरेब के रास्तों से कोस और दूर थे, तरीकत के समंदर थे मगर उनमें फ़ख्र गुरूर का शायबा तक ना था, जोहद रियाजत में इकतः रोज़गार थे, हकीकत के समंदर थे और सर की आंखों से उसे देखता था, शेर में ताज़दम रहते थे, कोई दूसरा शख्स दरमियान में हायल नहीं था, मारिफत के समंदर थे, गैरुल्लाह का खौफ उनके दिल में न था और दोस्त के मुशाहिदे और मुलाकात में तमाम कुर्बला से बेनियाज थे, अपने ज़माने में दीन को जिंदा करने वाले बायजीद रहमतुल्लाह अलैह बशर हाफिज़ रहमतुल्लाह जनाब उदाहरण की तरह से सखूर साहिब जोत थे और जोत सखा के एक अथाह समंदर थे, साहिब दिल थे, अल्लाह ताला की जानब से खुल्क अजीम रखते थे, आलम ग़ैब यानी अल्लाह ताला की जानब से उन्हें नेक कामों का इल्हाम होता था, 3 साल में 30,000 गुलामों को आज़ाद किया। 3 साल में 30,000 गुलामों को आज़ाद किया, जिसका उन्हें इल्हाम हुआ था फर्ब और अच्छी किस्म की मशहूर गायें और हज़ारों दुम्बे खैरात के, मोहताजों को बेशुमार नकद रकम दी, बहुत सारे घोड़े दबा किए, बेनवा बेसहारा नादार फ़रीकीनों को बहुत सारे लिबास दिया, हर काम खुदा के लिए करते, अच्छे तरीके से पकाया हुआ तो हम आम खास लोग खिलाते, जो कोई खाना चाहता बिला तकल्लुफ़ से रुक कर खाता था, घी पानी की तरह बेहिसाब फरमा तौर पर खर्च होता था, नहायत मुतहम्मिल मिजाज और बुर्दबाद थे, हर वक्त बावजू लेते थे, अल्लाह ताला के सामने से जरत होते जाते थे, बगैर कुछ कहे पिए हमेशा रोज़ से होते और वैसी तरीके से नवाजे गए थे, और ये भी नवाजिश बिलावास्ता रसूल करीम सब की जानिब से इनायत हुई थी। ये महबूबीन वाले जो बात है जो हज़रत मजद साहब रहमत फरमाते हैं ना, वो असल में यही बातें थी बचपन से, मतलब इनका ये मतलब सूरत हाल, तो अल्लाह पाक जिनको नवाजते तो फिर जा रहे उनके लिए माफ, तो वैसी तरीका है ना, वैसी तरीके से नवाजे गए थे, और ये भी नवाजिश बिलावास्ता रसूल करीम से उनकी जानब से इनायत हुई थी। इसी वजह से आप सूरज से भी ज़्यादा मशहूर थे, साहिब नज़र थे, अल्लाह ताला के सवा तमाम मखलूक को तर्क फरमा चुके, उनके मजलिस में तासीर थी, कभी किसी शख्स को रम्स के तौर पर शायद फरमाते तो शख्स वजद में आते थे, इसरार के रमूज इन पर पुनकशिफ हो गए थे, वजू करने की फजीलत उसके तमाम इसरार उन पर कुल गए थे, इसलिए आप नमाज में बेहद लुत्फ लज़त महसूस करते थे, आप दिन रात बादलाई में मुनामक और मसरूफ रहा करते और बात गुजारी में रोज़ अफरू तरक्की फरमाते। एक दफ़ा एक साहिब मनसब आदमी को हुक्म दिया कि लकड़ियों का एक गट्ठा बाजार ले जाए, वो शख्स तामील हुक्म करते लकड़ियाँ बाजार ले गया, तमाम लकड़ियाँ वैसी की वैसी रह गई और वो शख्स मंजिल मकसूद तक पहुँच गया। हमेशा नीयत में खलूस और सदाकत रखते थे, खुदा के बगैर उसके कोई अमराद नहीं थे, अलगर्ज़ उनकी वफ़ात के बाद अब तक मखलूक खुदा को उनका फैज़ पहुँचता है। ये बात हज़रत ने फरमाई दरमियान फरमाई, लेकिन बात ऐसी है कि बाज़ बुज़ुर्गों का फैज़ उनके मौत के बाद भी जारी रहता है। तो हज़रत उनमें से एक हैं, उनका फैज़ अब भी जारी रहता है, तो लेकिन बार फैज़ लेने का अपना एक अंदाज़ होता है ना, मतलब इस तरह तो नहीं होता ना कि जो चाहे तो हो जाए, उनसे उसके लिए अपना एक मतलब अंदाज़ होता है, क़ुरबानी होती है, मेहनत होती है, तो वो फिर मतलब जय अल्लाह पाक मुतवज्जे फरमाते। ये है कि बहुत माशाल्लाह यानी अल्लाह ताला ने हज़रत को मौत से पहले भी बहुत कुछ दिया था और मौत के बाद भी अल्लाह पाक ने उनका जो है ना वो सिलसिला चलाया हुआ है। ज़ाहिर बहुत सारी बातें इंसान कर नहीं सकता, लेकिन बहरहाल जो है वो तो होती हैं। तो हज़रत ने यहाँ पर ज़िक्र किया ये मौत के बाद भी मतलब उनका सिलसिला चल रहा है। बहुत से लोग उनकी मोहब्बत अखलास की वजह से, मजलिस में हाज़िरी की वजह से, खिदमत करने की वजह से, खालिस नीयत और अकीदत रखने की वजह से फैज़ से मुशर्रफ़ फरमाए, यहाँ तक कि गायब लोगों को ख्वाब में फैज़ पहुँचाया, उनके अफसाफ उम्मीद कहाँ तक लोगों तक मेरे रसाई कहाँ है, अति अलह के तौर पर दर्ज वलायत पर फैज़ थे, जिस तरह वैस रहमतुल्लाह को अरब में फैज़ रब्बानी हासिल हुआ था, इस तरह भी तरीके वैसे फैज़याब और मुशर्रफ हुए। मुनाकिब हाजा का ये ज़यीफ़ और कमज़ोर जामे शेख अब्दुल हलीम साहब फजल का कासिम अर्ज़ करता है कि एक दिन मैंने अपने शेख रहमतुल्लाह से अर्ज़ किया, ए हज़रत शेख, आपके पीर व मुर्शिद मोहतरम कौन साहब है? उन्हें जवाब दिया, खुदा मुझे आप कदर न देखा है। यह हज़रत का तक कलाम था जब अपने लिए किसी से बात करते थे। ये ख़ास हज़रत साहब के मामूल थे, जो कि मेहरबानी और तलतफ़ की वजह से बहुत से लोगों को मुखातब करते हुए फरमाते थे कि शेखी को मैंने शेख हो यानी मशाइख के लिए छोड़ दिया, पीरी को पीरों के वागजार कर दिया, सलूक साले को बख्श दिया, तसव्वुफ़ सूफियों के लिए छोड़ दिया। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी हालत ये कि अल्लाह ताला अपने बंदे को जंजीर मेरे गले में डाल दी है, चाहता हूँ कि जंजीर मेरे गर्दन में पड़ी रहे और मेरे गर्दन से जुदा न हो। रिश्ता दर गर्दन मफकंदा दोस्त, मैं बर हर जा के हाथ रखा उस्त, मेरे गर्दन में दोस्त ने रस्सी डाल रखी और जिस तरफ कि उसकी मर्जी मुझे कैंच ले जा रहा है, बस ये अबूदियत का मुकाम है और अबूदियत के बहुत से और बकसर दर्जात हैं। बाद व क़िबला दर तोहीद नतवा रफ्त रास्त, या रज़ाए दोस्त बाद या हवाए खुशतन, तोहीद के रास्तों पर दो क़िबलों की तरफ रुख करके नहीं चला जाता, या दोस्त की मर्ज़ी पर चलना होता है या अपनी ख्वाहिश पर। कितनी ज़बरदस्त बात मुख्तसर अंदाज में फरमाया, वाकई ये बात बिल्कुल है कि नफ्स के अंदर दो चीज़ें, फ़लहमा फजूरा व तकवा, तो जो फजूर की तरफ चले तो एक रास्ता ये है, और जो तकवा की तरफ चले तो दूसरा रास्ता ये है। यानी या अल्लाह की बात मानना होता है या अपने नफ्स की बात मानना होते। तो इसलिए कुरान पाक में जो फरमाया कि ना, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा जिनने अपने नफ्स को अपना इलाह बनाया हुआ है। तो उसकी वजह ये है कि मतलब जो लोग अपने नफ्स की बात इस तरह मानते जिस तरह खुदा की बात माननी चाहिए, तो उनके लिए ये बताया कि क्या तुमने नहीं देखा जिनने अपने नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। तो ये बात माशाल्लाह, यानी फरमाया कि ये बात नहीं हो सकती। तौहीद के रास्ते पर दो क़िबलों की तरफ रुख करके नहीं चला जाता, या दोस्त की मर्ज़ी पर चलना होता है और या अपने ख्वाहिश पर। गर मुराद व ज़ख बसूजन खाक सारे गुम बश मर मराजन बाशद बोस्तान गुम बश मनासक आसहाब कफम बरदर मरदा मुकीम गर्द हर दर ने मगर दम अस्तखवान गुम बश। अगर मुझे दोज़ख चलाए तो भी मुझे कुछ परवाह नहीं, और अगर मेरे लिए जन्नत ना हो तो एक बाग़ की भी मुझे हाजत नहीं। मैं असहाब कफ का कुत्ता हूँ, उन जवान मर्दों के दरवाजे पर क्या पजीर हूँ। मैं हर दरवाजे पर नहीं जाता क्योंकि मुझे हड्डी की कोई ज़रूरत ख्वाहिश नहीं, और ये मुकाम मोहब्बत ज़ाती है। अल्लाह मरज़ुकना, ए खुदा हमें नसीब फरमा और बुदियत मुकाम रज़ा है। अगर तुम पर कोई इफ्तात पड़े तो कज़ा इलाही पर अमल करो। कज़ा इलाही पर रज़ामंदी अख्तियार करना, उस पर चून चराना करना मुकाम रज़ा अबूदियत है। जब अबूदियत का शर्फ सआदत नसीब हो जाए तो लाजमी तौर पर करामत का ताज और इमामत की खलत हासिल होती है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, पाक वज़ा जिसने रात के वक़्त अपने अब्द को सैर कराई। उसी की जानब अब्द इशारिया इबादुन ला खौफ़ अलैकुम अल्यौम वला अंतुम तहज़न। उससे बात का नतीजा है दर खल्क दरगे खल्क हमा ज़रकस्त व फसूस हवस कार दरगाह खुदावंद जहाँ दार दो बस बंदे ख़ास मलक बाश के बादाग मलक रोज़हा ईमन जिस शुख नए शब बाज़। मखलूक की दरगाह तमाम दो कफरीब और हवसकारी खुदाए जाओ जहाँ के दरबार का काम मुफीद है, और बस बादशाह का ख़ास बंद और ग़ुलाम हो जा, क्योंकि बादशाह की ग़ुलामी की निशानी की वजह से दिन के वक़्त दारोगा से और रात के कोतवाल के दारोगिर से महफूज और अमन रहोगे। बदर मखलूक बोधन उम्र ज़ाय कर दनस खाक आदर्शो के आ बन गानश रोशनस्त। मखलूक के दरवाज़े पर होना अपनी उम्र ज़ाय करना है, उस दरवाज़े की खाक बन जा। उसके ग़ुलामों की इज़्ज़त रोशन आया और नुमाया है। पदर शेख अहमद सब का तरीका वैसी था, उसको नबी करीम सब का नूर मुबारक तरबियत दे रहा था, उसको सारे दर्जात अली अल्लाह ताला के फजल नायात से हासिल हो गए थे, और जो मोहब्बत सादत वगैरह उसको हासिल थी ये सब कुछ उसी का फैज़ था, और ये किस्मत अज़ली थी। उनका मुरीद अहबाब किस्मत के साथ रबता बातिनी तवज्जो के अज़ा तवज्जात के ज़रिए होता था। फजल एदी से साहिब नज़र थे, बहुत हर तक इरादत इन मुरीद बनाने का सिलसिला खुफिया रखते थे, उसको ज़ाहिर नहीं फरमाते, लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी इरादे से उस मुश्क खुशबू और इस अतर की लिपटे नसीम सुबह की तरह अल्लाह ताला के लुत्फ़ और फलो करम के गुलजार से ज़ाहिर रोयाँ हो गई, तो बहुत अरसे के लिए जो कोई भी हज़रत शेख रहमत की ज़्यारत मुलाकात को आता था उनका खाना वगैरह नहीं कहलाते थे ताकि लोग मना हो जाए, और खाना वगैरह न मिलने की वजह से ज़्यारत को ना आए, मगर ज़ाहरीन अपने साथ खुद खाने का सामान लाते, देहाती लोग खाना पकाए थे। उसके बाद हज़रत साहब ने हुक्म दिया कि जो लोग उनके पड़ोस में थे उनके नज़दीक कुर्ब जवार में रहते थे उनको फरमाया कि ज़ाहरीन के लिए उनके लाए हुए सामान खुराक से खाना न पकाए ताकि लोग की कसरत हजूम न हो, मगर ज़ाहरीन इस पर भी कम नहीं हो, बल्कि ज़ाहरीन अशिया खुराक के साथ पकाने का सामान देख वगैरह भी लाए डालने लगे, और अपने साथ लाए हुए सामान खुद पका दे। इस पर हज़रत ने हुक्म फरमाया कि इनके देख वगैरह तोड़ दिए जाएँ, मगर मर्ज़ बढ़ता गया जो जो दवा की, लोग आते रहे और भूखे रहते और आने से नमूने हुए वो न कम हुए, लोग तसलसल से मुतवातर आते। जब इस हाल में कुछ अरसा गुजर गया तो शेख अहमद ने फरमाया कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि अपने आप से लोगों का हजूम बाज रखूँ, लेकिन जब अल्लाह ताला इनको मेरे पीछे लगा रखा है अब निजात का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उसका कोई मदावा नहीं। इसके बाद इजाद फरमाया कि जो ही चाहता हूँ ज़ाहिरीन की खिदमत करे और ख़ुद भी गाह बगाए कुछ चीज़ खाने की चीज़ें नायत फरमाते। हज़रत साहब के बाद मुख्लिस मरीजों की ऐसी हालत हो गई थी कि उनको खाना खाने की भी इजाज़त नहीं थी, और बाज़ बहुत खाना खाते और कभी बिल्कुल नहीं खाते, हर हाल में खाने और न खाने की शक्ल में अपने नफ्स की मुखालफत करते। हज़रत शेख साहब जब के बुज़ुर्गों की तारीफ़ फरमाते तो अपने वालिद मोहतरम हज़रत शेख बहादुर साहब रहमत की बहुत तारीफ़ फरमाते। हाँ जी, उनकी कब्र की ज़ियारत को अक्सर तशरीफ़ ले जाते और मज़ार पर हाज़िरी देते। मैंने उनकी ज़ुबान तो कोई बात नहीं सुनी, لیکن جب حضرت والد صاحب بہت زیادہ ادب کرنے اور تعریف فرماتے ہیں نزول کے مزار پر کثرت سے حاضر دینے کی وجہ سے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ طریقۂ سروردی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی نسبت رکھتے ہیں. ہاں جی, ان کے واضح قول بیان سے ان کا طریقہ ویسی معلوم ہوتا ہے. شیخ صاحب یہ طریقہ ویسی ہر کسی کو بیان ہر کسی پر بیان یا ظاہر نہیں فرماتے تھے, اس کے بارے میں کچھ نہ فرماتے. اس کی علت کا یہ ہے کہ اسرار میں سے اور اسرار کا چھپانا بہت اچھی بات ہے. ایک بار حضرت صاحب اپنے والد محترم کے مزار کو بہت سارے لوگوں سمیت تشریف لے جا رہے تھے. حضرت صاحب کے والد محترم شیخ بادر صاحب خود عالم کے مرتبے پر حافظ تھے. حضرت شیخ صاحب نے اپنے ساتھی کو فرمایا کہ ہر شخص راستے پر چلتے ہوئے یہ دعا کرے کہ اللہ تو اس کی سر بلندی فرما, یعنی ان کے درجات بلند فرما, کیونکہ آپ کے سر بلند درجات ہمارے سر بلندی ہیں. اور جب مذکور مزار شریف کے لیے پہنچ گئے تو تمام لوگ کو ایک وادی میں رو کے رکھا اور ہر شخص کو ایک بلند مقام پر دینا تھا کہ جب کسی پر نظر پڑے کہ اس طرف آ رہے اس کو آنے سے منع کرے. ان کو کہا کہ جاؤ یہاں سے واپس چلا جائے. تھوڑی دیر کے بعد اس تمام مجموع گروہ کو جس کو منع کیا طلب فرمایا اور شیخ باز صاحب کے مزار کو اقدس پر تشریف لے گئے. لوگوں نے ایک ایسے شخص جو کہ بلندی پر تعینات کے ان کے حالات اور حقیقت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بیان کیا حضرت صاحب ننگے سر مذکور قبر کے پہنتے کھڑے تھے اور یہ بات حکمت سے خالی نہیں تھی, اس سے قبل یا بعد آپ کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا گیا. بہرحال آپ اپنے والد محترم قطب عالم شیخ بہادر صاحب کا اسم گرامی یاد فرمائے تو نہایت ادب و احترام سے یاد فرماتے. ان کو رشتی نے رازگو نام سے یاد فرماتے. بس یہ میرے پیارے یہ بات جان لے کہ ولی اللہ تین نوع کے ہوتے ہیں, تین قسموں کے ہوتے ہیں. بعض کی تو ولایت ہوتی ہے سریت نہیں ہوتی کہ دوسروں پر اثر کرے, اور بعض کی ولایت تو دوسروں پر اثر اندازی کی خاصیت ہوتی ہے لیکن اثر کا نفوذ ان کے عین حیات میں ہوتا ہے, ان کی وفات کے بعد یہ متاثر منقطع ہو جاتا ہے. ایسے ولی کو کامل کہتے ہیں. اور بعض ولایت بھی رکھتے اور سریت و اثر اندازی کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. زندگی اور مرنے کے بعد بھی ان کی تاثیر باری جاری رہتی ہے, ان کا اثر یہ نفوذ غیر منقطع ہوتے ہیں. ان کو مکمل کہتے ہیں. پہلے والے کامل ہیں, یہ مکمل ہیں. ہاں جی, ان کو مکمل کہتے ہیں. اس زمانے میں یہ مرتبہ بایزید بستامی کو حاصل تھا. ان کے یعنی حضرت شیخ احمد صاحب کے دوران حیات میں بہت سارے لوگوں نے ان کے جام و ساغر سے شراب محمد نوش کی تھی اور اس کی معرفت کے درمیان کا میں وقایا تھا. اس کے علاوہ 3300 علماؤں کو آزاد کر صاحب نے کمال جمال بے مثال تک پہنچایا تھا. اور جو لوگ حضرت شیخ رحمتہ اللہ کے ہاتھ و فیضیات ہو گئے تھے ان میں سے اکثر بنگش, کرم, ٹل اور مروت کے علاقوں میں سکونت پذیر ہے یا وہاں دفن ہو چکے. ان سے بعض شروع ہوئی, ان کے مزارات معروف و مشہور ہے اور بعض ابھی تک مخفی مستور ہیں. اور جو فیض کو ان کو حاصل ہوئے تو بعض کو نگاہ کی تاثیر سے حاصل ہوا, بعض کو مجلس کے اثر سے, بعض کو نیند کی حالت میں, بعض کو کم کانے اور فقہ کشی کے ذریعے سے حاصل ہوا, اور بعض مختلف کو غیبی شکل میں اگرچہ دور دراز کے علاقوں میں سے ہندوستان وغیرہ میں ہوتے ہیں. تو شیخ رحمۃ صاحب کی باتیں توجہ سے ان کو فیض پہنچتا اور اس فیض سے مستفید ہو جاتے ہیں, ان کو فائدہ پہنچتا. ان کے وفات کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا اور فیض پا رہے ہیں. بعض کو خواب میں, بعض کو مزار کے حاضر کے وقت, بعض کو نیند میں بھی اور حضور میں بھی فیض حاصل کرتے رہتے ہیں. اس مناقب کتاب کا جمع کرنے والے فقیر کو بھی روزہ مبارک سے فیض حاصل ہوا ہے. ہاں جی, چونکہ ہندوستان میں ہوتے تھے نا عبدالحلیم صاحب, ہندوستان میں ہوتے تھے جب حضرت فوت ہوئے تو پھر تشریف لائے, تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ قبر پہ بیٹھ کے جو نا. اچھا, تو یہ بات ہے کہ فرمایا کہ اور اکثر اوقات مزار اقدس پہ حاضری کے اوقات انواع اقسام کے فیضات حاصل ہوئے ہیں. جو کچھ کے دیکھے میرے دل نے دیکھو, جو کچھ سنے میرے کان نے سنا ہے, اور اس کا لطف وہ جانتے ہیں. اشارہ ان کے بیان کے لیے کافی ہے. اس سلسلے میں زیادہ کرنا باتیں کرنا بھی خلاف ادب ہے. اس وجہ سے میں نے مختصر طور پر اپنا حال بیان کیا اس مقولے پر کہ خیر الکلام ما قل ودل, یعنی بہتر بات وہ ہے جو مختصر و مدل ہو. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ کا جد محترم دادا جی شیخ مس بابا رحمۃ اللہ جو کہ طریقت کا سمندر تھے, وہ مجذوب عاشقوں میں تھے, عشق خداوندی مدہوش متعر رہتے تھے, عرف اور صدیقوں کے زمرے سے تھے. چنانچہ ایک وقت میں شرپسند فسادی ان پر تلواروں کے پیدر پہ وار کیے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ نہ ان سے ڈرے وہ نہ ان کی حالت و رنگ میں کچھ تغیر ہوا. ان کے ہاتھ سے تلوار کے پر ان کے حوالے کی, خود ان کو چھوڑ کر چلے گئے. بس یہ لازم بات ہے کہ اس پیر کے مطابق پیروی کے جو کہ شریعت و طریقت اور حقیقت کے راستوں سے واقف ہو اور وہ راستے اس کے دے کے بالے ہوں. میرے خیال میں کافی ہے. ہاں جی, کیونکہ جا رہے ہیں زیادہ انسان عزم نہیں کر سکتا. تو یہ ماشاء اللہ حضرت کے مناقب ہیں, لیکن آگے جا کر تعلیمات شروع ہوتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر مناقب پہ خوش ہوتے ہیں, کرامات پر خوش ہوتے ہیں. تو کرامات تو ان کے ہوتے ہیں اور مناقب بھی ہوتے ہیں, लेकिन लोगों को फायदा किस चीज़ से होता है? रिमांड से होता है, ये ज़ाहिर है उनके ज़रिए से उनको फैज़ पहुँचता है। तो इस वजह से तालीमात के हिस्से को ज़्यादा मतलब अहमियत देनी चाहिए, ताकि मालूम हो जाए कि हमें भी वो चीज़ कैसे हासिल हो सकती है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का मैनेजर से फैज़ जारी है। एक आलिम है माशाल्लाह, उनको हज़रत ने ख्वाब में बताया कि मैंने बताया कि जाओ उनसे सुरवर्दी सिलसिला हासिल करो। तो मैं कहाँ और मेरी हैसियत क्या, तो बहरहाल मैं मुझे जो किस किताब से मालूम हो गया था, किताबी इलम था मेरे पास सुरवर्दी सिलसिले का, तो मैंने फिर उनको उस मामले में बता दिया। खैर, लेकिन फिर चूँकि उधर से बात थी, तो फिर अल्लाह पाक ने एक रास्ता खोला उनके लिए और अल्लाह पाक ने उनको बात पहुँचा दी। तो मकसद मेरा ये है कि अब ये फैज़ है ना उनके मौत के बाद, मतलब दायरे वो चल रहा है। तो इस तरह और मजा हजरात भी हैं, ये है कि अब भी, लेकिन असल बात ये होता क्या है, होता ये है कि हर खैर के साथ शर होता है, मतलब शैतान तो मौजूद है ना, और नफ्स की भी ख्वाहिश मौजूद होती है। तो इस वजह से शैतान कुछ ऐसे तरकीब से उस खैर के साथ जैसे शर मिला देते हैं कि वो खैर का वो फ़ायदा फिर हासिल नहीं होता, तो उसको उससे दूर करना लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर देखें, हज़रत काकासिब रहमतुल्लाह अलैह इसलिए काकासिब थे कि खुदा के बंदे थे, यानी अल्लाह पाक की बंदगी उनको हासिल थी। तो अल्लाह की बंदगी क्या शिर्क से हासिल हो सकती? तो नहीं हो सकती। तो अब बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता काकासिब रहमतुल्लाह के इन मुकामात की वजह से उनको खुदाई सिफात में शरीक किया जाए, और मतलब ये कि इस किस्म की बात उनके साथ की जाए, तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होने लगेगा। ऐसा जैसे कि काश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, जैसे अली करम अल्लाह वजू के साथ हुआ। हाँ जी, तो ज़ाहिर मतलब है कि हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला जो चीज़ जिसको भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम याद हो कि अल्लाह ने दिया हुआ, अल्लाह ने दिया हुआ। ये अक्सर मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि बुज़ुर्गों के साथ जो ताल्लुक होता है, मसलन शेख, जो सबसे बड़ी बात होती है हर आदमी के लिए। अब शेख दे रहा होता है अल्लाह ताला की तरफ से, ज़रिया होता है, दरवाज़ा होता है। अब देखें, खिड़की है, खिड़की के पीछे कौन खड़ा, कोई खड़ा है। आपको खिड़की के पास जाना है और उनसे लेने हैं जो खिड़की के पीछे है, लेकिन जाने किस तरफ है? खिड़की की तरफ है ना, क्योंकि उधर से आपको मिलेगा वो चीज़। अब अगर वो खिड़की को ही देने वाला समझे तो क्या बात हो जाएगी। तो खिड़की की तरफ जाना ज़रूरी है, लेकिन खिड़की को देने वाला नहीं समझना। तो जब ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर माशाल्लाह वो अल्लाह पाक ने जिसके लिए जो दरवाज़ा बनाया होता है उसे पर देते और बेहा बहा देते। तो यही बात होती है। अब मतलब ये कुछ लोग तो खिड़की से भी इनकार कर लेते हैं, हाँ जी, कहते नहीं जी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो महरूम ले जाते हैं, और कुछ लोग खिड़की को देने वाला समझ लेते हैं तो वो भी महरूम ले जाते हैं। तो इसमें जो एतदाल वाली बात है वो ज़रूरी है। आप खिड़की की तरफ ज़रूर जाएँ, क्योंकि रास्ता वही है, लेकिन ये है कि अब जैसे एक साहब थे अरब हमारे साथी, उनसे मेरी पहली मुलाकात हमारे एक दोस्त के ज़रिए घर पे हुई। उसने तसव्वुफ़ की इतनी किताबें बड़ी बड़ी पढ़ी थी ना, और मशहूर मुतकद्दमीन की, कि मुझे इनके नाम भी मालूम नहीं थे। उनसे मैंने नाम सुना और हैरान हो गया। मैंने कहा इसके मुझे बहुत मुताले, बहुत ज़्यादा मुताला था तसव्वुफ़ का, लेकिन पंस गए थे एक आम किस्म की चीज़ में। कैसे? मुझे कहते शेख, मैं अपने में और अल्लाह के दरमियान किसी को नहीं ला सकता। अब बाज़ार ये बात तौहीद की है, मैंने फ़ोन कहा शेख कम से कम एक को तो मानना पड़ेगा, एक को दरमियान मिला होगा। कहते कैसे? मैंने कहा रसूलुल्लाह, जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के हुसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए से मुमकिन है। यानी अल्लाह पाक से कैसे लेंगे, आपको क्या पता अल्लाह पाक क्या चाहते हैं? ज़ाहिर तो आपको रसूलुल्लाह बताएंगे ना, तो रसूलुल्लाह तो दरमियान में होंगे, वही तो मतलब ज़रिया है, यानी समझना ज़रिया है, लेकिन ये ज़रिया लाजमी है, बगैर इसके आदमी नहीं हासिल कर सकता। तो फौरन मान गए, कहते नाम नाम मान गए। फिर इसके बाद मैंने कहा कि लेकिन आप सज़म तक पहुंचने के लिए आपको सहाबा को मानना पड़ेगा, क्योंकि सहाबा ही उनके अहवाल हम तक पहुंचाने के वो हैं, वही मुखातिब अव्वल थे। तो सहाबा ने उनको देखा था, जिनने देखा था तो वही हमें बता सकते हैं कि आप सज़म ने क्या फरमाया। कहते नाम नाम ठीक मान गए। इनका सहाबा तक पहुँचने के लिए आपको तीन ग्रोहों का मानना पड़ेगा। कहते वो कौन से? मैंने कहा मुहद्दिसीन, फुकहा और सूफिया। मुहद्दिसीन खबर देने वाले हैं, फुकहा उससे फिर मसाइल खर्च करने वाले हैं, और सूफिया अमल पे लाने वाले हैं। तो उसको भी मान लिया। हाँ जी, जब ये सारे मान गए तो मैंने कहा मुहद्दिसीन और फुकहा की बात आपको उलमा पहुँचाएंगे, और सूफिया किराम की बात आपको शेख पहुंचाएगा, जो भी आपका शेख होगा। तो इस वजह से ये भी यानी वस्तलू अहल ज़िक्र इनको तुम रहा तालम कुरान पाक में ना, अगर आप नहीं जानते तो फिर जानने वाले से पूछो। हाँ जी, और तरबियत भी किसी से करवानी होगी। इस पर खामोश हो गए, कुछ कहा नहीं। खैर, वहाँ तकरीबन घंटा सवा घंटा उनसे बात हो गई। चंद दिन के बाद वो यहाँ तशरीफ़ लाए, इधर बैठे हुए थे, बैत हो गए, जिक्र ले लिया, माशाल्लाह बात पूरी हो गई, बस समझ आ गई उनको। तो अब देखिए, इन किताबें इतनी बहुत पढ़ी थी, लेकिन मामूली सी चीज़ बात, वो जिसमें फंस गए थे और रुकावट थी, वो उन चीज़ से फ़ायदा, मतलब उस चीज़ से फ़ायदा सिर्फ इल्मी था। इल्मी तौर पर वो जानते थे कि क्या चीज़ है, अमली के लिए कौन सी कौन सा तरीका है वो ज़रा मुश्किल था उसके लिए, समझ नहीं आ रही। तो ये इस वजह से जो है ना, मतलब बाद लोग तो इनकार कर लेते हैं, बाद लोग कुछ आगे बढ़ जाते हैं। इस वजह से तफरीत और अफराद दोनों से निकलना होता है, यानी जो नहीं मानते उनको मानना होगा, और जो मानते हैं तो उनको उतना मानना होगा जितना मानने का होगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं, उसको इस पर बाकी रखना ज़रूरी है। तो बस यही माशाल्लाह, ये खानकाओं का काम यही है असल में, कि इसमें यही काम होता है कि जो है ना, जो चीज़ जितना है उनको उतना पहुंचा दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ें अल्लाह का शुक्र हम तक पहुंची हैं। अब इनको संभालना और फिर दूसरों तक पहुंचाना, ये फिर हमारा काम है, हमें करना पड़ेगा। इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। बाकी ये है कि ये जो अभी आज का बयान हुआ है, तो उसको ग्रुप में डाल लें, सब तक मतलब जो है ना पहुँच जाएँ, तो वो जो है ना मतलब जो सुन लेगा तो सुन लेगा, जो नहीं सुनना चाहता तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मारहा ये है कि हमारा काम तो कहते हैं वमा अलैना इल्ला अल-बलाग, हमारा काम सिर्फ पहुँचाना है। उसके बाद हर एक शख्स की अपनी अपनी किस्मत है, जो जितना लेना चाहता है उतना ले लेगा। हाँ जी, और हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। अल्लाह ताला हम सबको कबूलियत नसीब फरमा दें। वो आखिर दावा अलहमद रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलतुका मिन अब्दिका व नबीका हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअअज़ मिन अब्दिका व नबीका हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंतल मुस्तान व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिक, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही।